Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om. Krishna Yajurvediya. मंत्रोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद का प्रसंग है, चतुर्थ अध्याय में पहला मंत्र। पांच मंत्रों का अभ्यास करें। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात्, वर्णानेकान् निहितार्थो ददाति, विचैति चान्ते विश्वमादो सदेवः, स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु, तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि, त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः, नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस्, तडिद्गर्भारितवः समुद्राः, अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे, अनादिमत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्व अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णाम् बहवः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः।
तो श्वेताश्वतर उपनिषद के आधार पर परमात्मा के बारे में विचार चल रहा है। विश्व में जो मूल तत्व है वो एक है, एक से अनेक हुआ है, अनेक होने पर भी वो एक है, और क्योंकि वह एक पहले नहीं, वो अनेक पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, अनेक केवल बीच में प्रतीत हुआ है, इसलिए अंत में भी वो एक ही रहेगा। अनेकता की कल्पना ये बुद्धि की भ्रांति है। तत्व वस्तु बुद्धि से परे है, इसीलिए उस एक वस्तु बुद्धि की पकड़ में आने वाला चीज नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम हर वस्तु को बुद्धि से पकड़ते हैं और हम चाहते हैं कि वो परमात्मा भी बुद्धि से ही पकड़ में आ जावे। क्योंकि वो बुद्धि स्वयं परमात्मा, उस अद्वितीय परमात्मा में कल्पित है। कल्पित बुद्धि अकल्पित परमात्मा को नहीं पकड़ सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, श्रुतियों ने कई बार निषेध किया है कि अरे संसार के मनुष्यों, यदि परमात्मा को तुम इंद्रिय मन और बुद्धि से पकड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ है। इन साधनों में वो क्षमता नहीं है कि उस परमात्मा को पकड़ सके। पकड़ सके का अर्थ है अपना विषय बना सके। अनेक पदार्थ इन बुद्धियों का विषय हो सकता है, अनेक पदार्थ इन बुद्धि मन इंद्रियों का विषय हो सकते हैं, परंतु एक वस्तु मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं हो सकता। फिर उस एक वस्तु को जाने कैसे? उस एक वस्तु को जानूंगा ये कहना ही तुम्हारी गलती है, क्योंकि वह अज्ञात नहीं है। कोई वस्तु अज्ञात होता तब उसको फिर जाना जाता, वो अज्ञात नहीं है। वो तो ज्ञान स्वरूप है, अज्ञात कहां से है? वो वही वस्तु अज्ञात हो जाता तो फिर संसार भी सब अज्ञात होते। केवल हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि वो वस्तु क्या है। ब्रह्मा परमात्मा वो वास्तव में अज्ञात ही होता आज तक तो फिर वो कभी भी ज्ञात न होता, क्योंकि जो अज्ञात है वो अज्ञात ही रहेगा, अज्ञात ज्ञात नहीं होता है। आप घबराना नहीं, थोड़ा वेदांत की प्रक्रिया आ जाए तो घबराना नहीं। अज्ञात अज्ञात ही रहेगा, अज्ञात कभी ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि ये गीता का सिद्धांत है। जो पहले नहीं था वह बाद में भी नहीं रहेगा, तो इसका मतलब बीच में भी नहीं रहेगा। जो पहले अज्ञात है वह बाद में भी अज्ञात ही रहेगा, इसका मतलब बीच में भी वह अज्ञात ही रहेगा। बाद में वही ज्ञात होगा जो पहले ज्ञात था। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत का कभी अभाव नहीं होता, सत कभी अप्रतीत नहीं होता। अभाव नहीं होता का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? सत का कभी अभाव नहीं होता, इसका मतलब यह हुआ कि सत कभी अप्रतीत नहीं होता। असत कभी भाव नहीं होता, इसका मतलब यही हुआ कि असत कभी प्रतीत नहीं होता, यानी सत के रूप में प्रतीत नहीं होता। फिर भी आपको सत जैसा लग रहा है विश्व ब्रह्मांड, तो सत होकर सत जैसा लगा है ये नहीं, वो भ्रांति है। और भ्रांति से जो लगता है वो सत होता नहीं। यही तो एक विशेषता है, भ्रांति की विशेषता है। सत को सत प्रतीत होना न देना और असत को असत प्रतीत होना न देना, इसी का नाम तो भ्रांति है। सत की सत को असत के साथ जोड़ देना और असत के असत को सत के साथ जोड़ देना, तब आपको भ्रांति होती है कि जो असत है यही सत है, और जो सत्य की बात कर रहे हैं वो तो हमारी पकड़ में न आने के कारण वो केवल कल्पना है। अरे भाई, हमारी बुद्धि की पकड़ में न आने के कारण वो कल्पना है, ये कहना गलत चीज है। इन्हीं भाव को इस मंत्र के द्वारा श्रुति ने हमें समझाया है। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णन अनेका निहितार्थो ददाती, इसकी व्याख्या हम कल कर रहे थे। निहितार्थ की व्याख्या हम कर रहे थे कल। वो जो एक है वो एक रहता हुआ ही किसी अन्य के अन्य प्रयोजन के लिए वह अनेक हो जाता है। वो अनेक होना उसका अपना प्रयोजन नहीं है। बात ध्यान से सुन लेना। वो एक परमात्मा बहुधा शक्ति योगात अनिर्वचनीय शक्ति के योग से जो अनेक होता है, उस अनेक होने में उसका अपना प्रयोजन नहीं है। वह इसलिए अनेक नहीं होता है कि सबके घर में जितना भी अलग अलग भोजन बना है वो सब का हम स्वाद ले लेंगे, इसके लिए एक ही होंगे तो सब जगह पहुंच नहीं पाएंगे, अनेक होकर अनेक के सभी भोजन का स्वाद ले लेंगे, इसलिए वो अनेक नहीं हुआ है। बात समझ रहे हैं? बंबई में कितने भगवान के भक्त हैं? बहुत हैं। कृष्ण के भक्त बहुत हैं, राम के भक्त बहुत हैं, शिव के भक्त बहुत हैं। एक बंबई में इतनी हैं, एक मलबार हिल में कितनी होंगे, एक यूजीस रोड में कितनी होंगे। सभी के घर एक ही प्रकार का भोजन तो बनेगा नहीं। आजकल तो आपूस कैरी का सीजन आ गया है, एक तरफ रस बनाएंगे दूसरे तरफ भजी तो करेंगे। अब किसी ने रस बनाया फजीता नहीं किया है और उसको फजीता खाने की इच्छा हो गई, तो एक घर में रस खाने जाएगा तो दूसरे घर में फजीता। तब तक वो कहेंगे कि अरे महाराज, पहले आए होते तो थोड़ी फजी तो मिलती ही, और तो फजी तो हम खा चुके। तो क्या करेगा बेचारा, उस दिन वो फजी तक खाने से वंचित रह जाएगा। तब उसने एक विचार किया, एक से अनेक हो जाएंगे तो जिसके यहां फजी तक खाना है वहां फजी तो खाएंगे, जिसके यहां रस खाना है रस खाएंगे। तो एक से अनेक हो जाएगा तो सारी दुनिया में एक से अनेक है, सभी क्या जाएगा तो सभी प्रकार की वैरायटी वो टेस्ट कर लेगा। क्या इसके लिए वो एक से अनेक हुआ है? क्या है इसके लिए वो एक से अनेक हुआ है? क्योंकि अलग अलग भक्त हैं, सभी के यहां एक साथ जाना है, एक ही होकर एक ही रहेंगे तो नहीं जा पाएंगे, अनेक हो जाएंगे तो सभी जगह पहुंच पाएंगे। तो आपके बहु बेटे लंदन में कुछ और अभी सो रहे हैं, तो अब उसको इस समय खाने की इच्छा हो तो इंडिया आएगा, और रात को खाने यहां जब रात होगी खाने की इच्छा हुई तो लंदन जाएगा। ऐसा है क्या? इसके लिए वो अनेक हुआ है क्या? अनेक हो जाएंगे तो वहां भी वहां खाएंगे, यहां जब सोएंगे वहां खाएंगे, वहां जब सोएंगे यहां खाएंगे, खाते रहेंगे, इसके लिए वो अनेक हुआ या सोते रहेंगे? नहीं, अपने लिए नहीं। तुम यहां जो बनाओगे, जिसके रूप में, जिसके परमात्मा को जिस रूप में तुम स्मरण करोगे उसी रूप में तुम्हें आनंद की अनुभूति हो जावे, इसी के लिए वह अनेक हुआ है। तुम्हें उस परमात्मा के सेवा का आनंद मिले इसके लिए वह अनेक हुआ है। तुम्हारी सेवा से वह परमात्मा आनंदित होवे इसके लिए वो अनेक नहीं हुआ है। निहितार्थ का अर्थ हमने कल दो व्याख्या की थी, एक तो किसी निश्चित प्रयोजन के लिए वह एक से अनेक होता है और वो प्रयोजन पूरा हो जाने के बाद उसका वह अनेक होना निष्प्रयोजन हो जाता है। हमने कल ये बात कही थी, कृष्ण कभी भी रावण को नहीं मार सकते, हमने कल ये बात कही थी कि कृष्ण कभी भी रावण को नहीं मार सकते। रावण बांसुरी से मरने वाला व्यक्ति नहीं है, रावण केवल लीला करके रास करके मरने वाला चीज नहीं है, इसलिए कृष्ण रावण को नहीं मार सकते और शायद राम कंस को नहीं मार सकते, चाणूर को नहीं मार सकते। जिसको जिस रूप में मारना है उसको उसी रूप में उपस्थित होकर वो काम करना है। राम कभी भी किसी के साड़ी चोर अपहरण नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। राम किसी की मक्खन चोरी नहीं कर सकते, किसी के वस्त्र चोरी नहीं कर सकते। वासना चोरी नहीं कर सकते, चोरी करने के लिए कृष्ण ही आना पड़ेगा। वसन अर्थात संस्कृत भाषा में वस्त्र को वसन कहते हैं, वसन एव वासना आच्छादनात्। वस्त्र का काम है शरीर को ढकना, वस्त्र का काम है वसाच्छादन धातु से वस्त्र बनता है, ढकने का काम है। और आपके पास आपके ही अपना ही स्वरूप को ढक देने वाला क्या है? वासना। उसका अपहरण जब तक नहीं किया जाए, उसका उसकी चोरी जब तक न की जाए, आपसे आपकी वासना मांगी जाए तो आप वासना देने को तैयार नहीं हो। आपकी वासना आपसे मांगी जाए तो आप देने को तैयार हो? कितने आदमी हो अपनी वासना देने को तैयार? कितने आदमी तैयार हो? आपको आपके पास देह वासना है कि नहीं? उस देह वासना को देने को तैयार हो? देहाध्यास देह वासना। आपको आपके पास वित्त वासना है कि नहीं? पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा, यही तो वासना। कुछ करने की इच्छा है, कुछ खाने की इच्छा है, कुछ भोगने की इच्छा है, कुछ देखने की इच्छा है, कुछ ये सारी वस्तु इच्छा रहित आपके स्वरूप को ढककर आपको इच्छा वाला बना रहा है, यही वासना है। आप अकर्ता अभोक्ता हैं और अकर्ता अभोक्ता होते हुए भी आप कर्ता भोक्ता बनकर बैठे हैं और आप कहते हैं कि अभी भी करना इतना बाकी है, इतना किया इतना करना बाकी है, इतना भोगा इतना भोगना बाकी है, ये देखा इतना देखना बाकी है, इसी का नाम वासना। और इन्हीं वासनाओं के चलते आपका जो अपना निर्वासित वासना रहित शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं हो पाता है। तो आपसे आपकी वासना मांगी जाए तो आप नहीं दोगे, इसीलिए भगवान को चोरी करनी पड़ती है, भगवान को चोरी करनी पड़ती है। जब वस्त्र चोरी करके भगवान श्री कृष्ण ले जाकर रूप पेड़ में रख दिया, उन गोपियों को कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे वस्त्र कौन चोरी किया, कहां गया, कुछ भी पता नहीं। वो तो सरोवर में आनंद से नहा रहे थे। जब कुछ दिन कुछ देर के बाद उनको वस्त्र की आवश्यकता पड़ी तो बाहर निकले, वस्त्र कुछ नहीं, अब तक क्या करे, कहां गया। तो इधर उधर देखे तो नीचे जमीन में रखी हुई वस्त्र सब पेड़ में चले गए, ये अपने आप तो गए नहीं है। तो कैसे गए पेड़ में? हवा भी नहीं चल रही थी। थोड़ा ध्यान देकर देखा तो वो वहीं बैठे हुए थे, वस्त्र चोरी करता। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, हमारे वस्त्रों को तुम चोरी करके ले गए, वहां दो भाई, हमको ठंडी लगी है, अब हमको अपने अपने घर जाना है। तो उन्होंने कहा तुम आओ, वस्त्र ले जाओ अपना अपना, वस्त्र की आवश्यकता है तो ले जाओ। तुम्हारी वासना परमात्मा ने तुम्हें नहीं दी है, तुमने ही तैयार की है। तुमको चाहिए तो ले जाओ वासनाएं, और नहीं चाहिए तो छोड़ो। वासना छोड़ते हो तो निर्वासित रहो, वासना चाहिए तो आओ ले जाओ, हम क्यों देने जाएंगे। उनको बहुत कठिनाई हुई, कैसे जाएं लेने के लिए। तो भागवत में जैसा कि उनकी लीलाओं को वर्णन किया गया है, कहा कि आगे मंत्र है, तुम आपह, श्रुति कह रही है परमात्मा को, हे परमात्मा तुम ही जल के रूप में सरोवर में बैठे हो। जल परमात्मा रूप है ये बात की अनुभूति तुम्हें नहीं हुई, इसलिए तुमने अपराध की। और उस अपराध का प्रायश्चित तो यही है कि हाथ जोड़ते हुए आओ कपड़े ले जाओ। कितनी कठिन शर्त है भाई। तो अंत में उनको वो करना पड़ा, हाथ जोड़ते हुए गए, वस्त्र ले आए। पहले उन वस्त्रों के चलते वह देहाध्यास में जी रहे थे, अब उनको ये बोध हो गया कि देह अध्यास कुछ भी नहीं है। बाद में उनको वस्त्र पहनते हुए भी उनको देहाध्यास नहीं है गोपियों को, परंतु इस लीला से पहले उनको आसक्ति है कि मैं स्त्री हूं, हम इस समय निर्वस्त्र हैं, उसके बाद हम सवस्त्र होंगे, ये पहले ये सब भान है। लेकिन बाद में ये भान नहीं है, बाद में केवल औपचारिकता निभा रही है। तब भगवान श्री कृष्ण यानी परमात्मा निहितार्थः निश्चित प्रयोजन के लिए, तब वह अनेक होते हैं। ये ईश्वर की लीला का रहस्य है। वर्णान अनेका निहितार्थो ददाति, और स्वयं के प्रति तो निहितार्थ है, निर्गत अर्थ प्रयोजनम, नेता उसको क्या प्रयोजन है भाई। तुम्हारे वस्त्र को अपहरण करके उस परमात्मा को क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? कुछ भी नहीं। उसको क्या बेनिफिट है? कुछ भी नहीं। आत्मारामस्य आत्मकाम आत्माराम आप्तकाम निष्काम यस्त्वात्मरतिरेवस्यात आत्मतृप्तश्च मानवः। गीता में इसी भाव को कह दिया गया है। जीवन मुक्त पुरुष को जब यह अवस्था है तो उस परमात्मा को किसी कर्म से या किसी क्रियाओं से किसी अवस्थाओं में उसको आनंद की अनुभूति होगी, ये तो कल्पना ही छोड़ दो, तो आनंद घन है। ये बड़ा विचित्र है, कुछ सिद्धांतों को न समझने के कारण कठिनाई आ जाती है, विशेष करके अद्वैत और द्वैतवाद में ये विवाद चलता रहता है। अद्वैतवादियों का मानना है कि परमात्मा तुम आनंद तभी होगे जब तुम अद्वितीय एक रूप में हो जाओगे। जब तक द्वितीयता रहेगी तब तक तुम्हें वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। द्वैताद्वै भयम् भवति यत्र तस्य आत्मैवाभू तत्केन कम्पस्य तत्केन कम् विजानीयात्। जब तक दो रहेंगे तब तक डर और भय और चिंता रहेगी, जब एक के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर किससे कौन डरेगा, किसकी कौन चिंता करेगा, किसकी क्या चिंता होगी। यह अद्वैत वेदांत। तब द्वैतवादियों का कहना है अरे भाई ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म ही हो गए तो ब्रह्मानंद कैसे अनुभव करेंगे? ब्रह्मानंद अनुभव करने के लिए ब्रह्म से भिन्न ब्रह्मानंद का अनुभव करता द्वैत रहना ही चाहिए। ये बात कुछ द्वैतवादी लोग कहते हैं और बड़ा विरोधाभासी बोलते हैं। वो एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा को आनंद घन बोलते हैं और दूसरी तरफ परमात्मा को कहते हैं कि उस परमात्मा रूप हो जाने के बाद आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो फिर हम प्रश्न करते हैं ऐसे व्यक्तियों से कि अद्वैत में आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती कहने वालों से हम ये प्रश्न करते हैं, तो इसका मतलब परमात्मा भी आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है।